नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में कहा, वैश्विक मानकों के अनुरूप राज्य कम से कम एक पर्यटन स्थल को विकसित करे। भारत ने दशकों से जारी सीमा पार आतंकवाद को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और आत्मरक्षा के अधिकार के लिए जर्मनी के समर्थन पर आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। क्वालालंपुर में किदांबी श्रीकांत मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंच चुके हैं और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंग्लैंड दौरे के लिए शुभमन गिल की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट टीम की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कहा है कि वे वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रत्येक राज्य में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करें और एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य के अंतर्गत सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करें। आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि इस फैसले से पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा। श्री मोदी ने कहा है कि यदि केंद्र और सभी राज्य एक साथ आए और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य लोगों ने बैठक में भाग लिया। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य और सीईओ भी मौजूद रहे। इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए विकसित राज्य। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि उसने दशकों से सीमा पार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमलों का सामना किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि पर्वतेनी हरीश ने सशस्त्र संघर्षों में नागरिकों की सुरक्षा पर एक खुली बहस में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बार बार नागरिकों को ढाल बनाया है। श्री हरीश ने कहा है कि दुनिया ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए कुख्यात आतंकियों के अंतिम संस्कार में वरिष्ठ सरकारी पुलिस और सैन्य अधिकारियों को शामिल होते हुए देखा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आतंकवाद के विरुद्ध में भारत की लड़ाई और आत्मरक्षा के अधिकार के लिए जर्मनी के समर्थन पर आभार व्यक्त किया। जर्मनी के बर्लिन में जर्मन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में एक संवाद में डॉ जयशंकर ने कहा कि जर्मनी के आतंकवादी हमले पर की गई निंदा से भारत उत्साही है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान ने कई वर्षों तक आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है और आतंकवादियों को पनाह दी है। डॉ जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह एक पैटर्न है जिसने न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में भी निशाना बनाया है। विदेश मंत्री ने भारत जर्मनी संबंध के बारे में कहा है कि दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी संबंध बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज बहरीन पहुंचा ताकि आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति भारत के जीरो टॉलरेंस के दृढ़ संदेश को लोगों के सामने रखा जा सके। अपने कार्यक्रमों के दौरान प्रतिनिधिमंडल सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के अडिग रुख को उजागर करेगा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने कल रात गुजरात के बनासकांठा जिले में भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठ को मार गिराया है। बीएसएफ ने एक बयान में कहा है कि उसके जवानों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पार करके सीमा की बाड़ की ओर आते हुए देखा। बीएसएफ कर्मियों ने घुसपैठियों को चुनौती दी लेकिन वह आगे बढ़ता रहा जिससे उन्हें गोली चलानी पड़ी। घुसपैठ की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं झारखंड में कल रात लातेहार जिले के सलेया जंगल के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में माओवादी पप्पू लोहारा सहित तीन नक्सली मारे गए हैं। लोहारा नक्सली गुट झारखंड जनमुक्ति परिषद जेजेएमपी का सरगना था। सरकार ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून पिछले वर्ष 16 से पहली बार आज केरल में अपनी निर्धारित तिथि के 8 दिन पहले पहुंच गया है। केरल में मॉनसून सामान्य रूप से 1 जून तक पहुंचता है। मौसम विभाग ने कहा है कि इससे पहले केरल में साल 2009 में मॉनसून समय से पहले आया था। कर्नाटक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून अब कर्नाटक के कारवार, शिवमोगा, हासन और मैसूर तथा तमिलनाडु के धर्मपुरी और चेन्नई से होकर गुजर रहा है। कर्नाटक से हमारे संवाददाता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून अब कर्नाटक के कारवार, शिवमोगा, हसन और मैसूर तथा तमिलनाडु के धर्मपुरी और चेन्नई से होकर गुजरते हुए महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार बारिश की स्थिति पैदा कर रही है। मौसम विभाग ने आज 2 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने तथा तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने की आशंका है। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 13 जिलों तवांग, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, कुरुंग कुमे, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, दिवांग वैली, लोअर दिवांग वैली, अंजाव, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर दूसरी बार मुकदमा दायर किया है। इससे पहले होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने कहा था कि वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दाखिल देने से रोक देगा। हार्वर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि हार्वर्ड अपने छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं की सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। यूरोपीय संघ के व्यापार प्रमुख मारोस सेफकोविक ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार वार्ता के लिए आपसी सम्मान की आवश्यकता है, न कि धमकियों की। उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईयू में अमेरिका को भेजे जाने वाले सभी सामानों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी के बाद आई है। उन्होंने कहा कि यूरोप पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और दोनों पक्षों के लिए कारगर सौदा सुनिश्चित करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआई मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित किए जाएंगे। मणिपुर में राज्य स्तरीय शिरुई लिली महोत्सव 2025 में आज सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम, फिल्म स्क्रीनिंग, एक फुटबॉल फाइनल मैच और कई अन्य कार्यक्रम होंगे। 20 मई को शुरू हुआ महोत्सव आज शाम उखरूल जिले के बख्शी ग्राउंड में संपन्न होगा। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज कहा है कि पूरे भारत में लगभग 1,00,000 छात्रों को निःशुल्क एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा। नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि आगामी स्किलिंग फॉर रेडीनेस एआई कार्यक्रम के अंतर्गत मॉड्यूल बनाए गए हैं और जल्द ही कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को इसके प्रशिक्षण दिए जाएंगे। किदांबी श्रीकांत ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने सेमीफाइनल में जापान के योशी तनाका को 21-18, 24-22 से पराजित किया। इसके साथ ही किदांबी श्रीकांत इस वर्ष मलेशिया में आयोजित इस प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में पहुंचने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। यह मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें प्लेऑफ की दौर से पहले ही बाहर हो चुकी है। भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पोलैंड के चारजाओ में रजत पदक हासिल किया है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज ने अपने 6ठे और अंतिम प्रयास में 84.14 मीटर दूरी तक भाला फेंका। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आगामी इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा कर दी है। शुभमन गिल के टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि ऋषभ पंत उप कप्तान की भूमिका निभाएंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भारतीय टीम पहली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला खेलेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।